हरे कृष्णा। तो संक्षेप में आपको अगली कहानी बता देते हैं। आप सबको पता होगा कि सती अनसुया पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री थी और उसकी पतिव्रत धर्म की जो ख्याति थी वह सभी लोकों में फैल गई थी। यहाँ तक कि ब्रह्मालोक, शिवलोक, इंद्रलोक सब जगह पर उनकी ख्याति पहुंच गई थी। तो सरस्वती देवी, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी को एक बार ऐसा विचार आया कि हमसे बढ़कर सती कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपसे बढ़कर सती पृथ्वी पर है, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने पतियों को भेज, जाओ उसके सतीत्व का परीक्षा करो। तो ब्रह्मा, शिव और विष्णु जी ऋषि बनकर गए अत्रि मुनि के आश्रय में और उन्होंने कहा कि हमें भगवती भिक्षा दे। तो अनसुया देवी पति की सेवा कर रही थी, बाहर आई और कहा कि भोजन ले लो। उन्होंने कहा हमारी एक कंडीशन है कि आप निर्वस्त्र होकर नग्न अवस्था में हमारा भोजन करो, हमारे लिए भोजन करो, भोजन परोसना है। तो वो समझ गई कि इसमें कुछ षड्यंत्र है। तो वो गई अंदर, अपने पति का जो दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल था वो ले आई, उसका जल लेकर इन तीनों ऋषियों पर उसने फेंक दिया। उस जल का स्पर्श होते ही ये तीनों ऋषि जो है वो नग्न बालक बने छोटे से। उनको उन्होंने बिठाया और स्वयं निर्वस्त्र होकर उनको भोजन कराया। सतीत्व का ये शक्ति है, सती क्या नहीं कर सकती है। गांधारी देवी सती थी, केवल दृष्टि, अपना दृष्टि जो है अपने पुत्र के शरीर पर डालकर सब वज्र बना दिया उसने, उसका इतनी शक्ति थी उसमें, केवल पतिव्रता होने के नाते। तो जब ये बालक बने और भोजन किया तो बहुत आसक्त हो गए उससे और वहीं पर रह गए उनके माँ पुत्र के रूप में। तो अनसुया भी उनके बड़ी प्रेम से बालक के रूप में सेवा करने लगी। बहुत समय बीत गया, तीनों की पत्नियां परेशान हो गई कि हमारे पति गए कहाँ, पृथ्वी पर गए थे परीक्षा करने के लिए, वापस लौट के नहीं आए। तो वो तीनों देवियां जो है वो अत्रि मुनि के आश्रम में आई अनसुया देवी के पास और पूछा हमारे पति कहाँ हैं। उन्होंने कहा वो देखो खेल रहे हैं वहाँ पर। तो कह रहे कृपा करके लौटा दो हमारे पतियों को, हम मानते हैं कि आप ही सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता देवी हैं। तो फिर उन्होंने पति का कमंडल का जल लिया, उन पर छिड़का, तो फिर तीनों देव प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आपका पुत्र बने, हम आपसे इतने आसक्त हो गए माता के रूप में, हम आपका पुत्र बनना चाहते हैं। तो फिर उनके पुत्र के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एकत्र होकर दत्तात्रेय बने और उनके पुत्र बने। लेकिन जब वो लौट रहे थे तो सती अनुसुया ने उनको शाप दे दिया तीनों को कि चलो मेरा तुम्हारा प्रेम हुआ वात्सल्य का, आपने मुझे माता मान लिया और मैं भी आपसे आ सकता हूँ, फिर भी आपने मेरे सतीत्व का परीक्षा लेने का प्रयास किया, तो आपको शाप देती हूँ कि आप तीनों पत्थर बन जाओगे। तो वो तीनों मिलकर बने त्रिंग, हाँ ऐसी एक संज्ञा, नोमेनक्लेचर कम्स इन स्क्रिप्चर। वो त्रिंग जो है तीन पर्वतों का एक त्रिंग बना, कन्ग्लोमरेशन ऑफ थ्री माउंटेन्स। और प्रभु रामचंद्र ने इन तीनों को ब्रज में बसाया, ब्रह्मा जी को बरसाने में, शिव जी को नंदगांव में और विष्णु जी को गोवर्धन के रूप में उन्होंने विराजमान किया, ऐसा वर्णन शास्त्र में आता है। फिर उसी गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया और राम जी की सेवा में बड़े आतुर थे वो, लेकिन नहीं कर पाए। फिर राम जी ने वरदान दिया कि अगले अवतार में आपसे सेवा लेंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी ब्रज में आकर पर्वत बने और यहाँ पर आकर चार मुख वाले ब्रह्मा जी ब्रह्माचल के रूप में विराजमान, ये भी इसका इतिहास है। अभी ललित माधव इस ग्रंथ को रूप गोस्वामी ने लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस ललित माधव में पूर्णमासी देवी जो पार्वती जी का अवतार है और वो गोपी बनकर आती है भगवान की लीला में, सब गोपियों के गुरु बनते हैं वो, सब गुरु उनका, सब गोपियाँ उनका मार्गदर्शन स्वीकार करती हैं, उनसे आज्ञा लेती हैं, सलाह करती हैं। तो पूर्णमासी देवी जो है गर्ग मुनि की कन्या है, उसका नाम है गार्गी। उस कन्या को ये कहानी बता रहे हैं राधा रानी के जन्म की और ये कहानी उन्होंने रोहिणी देवी और यशोदा देवी से भी कही थी उसके बाद में। तो नारद मुनि जी इसका वर्णन कर रहे हैं और उसका वर्णन रूप गोस्वामी जी अपने ललित माधव ग्रंथ में कर रहे हैं। सारा शास्त्र जो है वो संवाद के रूप में, कोई ना कोई किसी न किसी को बता रहा है कुछ, कोई ना कोई प्रश्न कर रहा है और कोई उत्तर दे रहा है उसका। और फिर उन्होंने क्या प्रश्न किया, क्या उत्तर दिया, कि कोई और किसी को बता रहा है कि ऐसे प्रसंग में इन्होंने इनको ऐसा प्रश्न किया था, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था। इस तरह से हमारे सारे शास्त्र बने हुए हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, श्रुति। श्रुति यानी जो कर्ण के द्वारा इसका स्वीकार किया जाता है, कान के द्वारा उसको स्वीकार करते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं और उसको अपने अमल व्यवहार में उतारते हैं। तो कथा ऐसी है कि हिमालय सब पर्वत भगवान के भक्त हैं, पर्वत के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो हिमालय को पार्वती जी, पार्वती मतलब पर्वत की पुत्री पार्वती, पार्वती जी जो दुर्गा देवी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति वो प्राप्त हुई और उसका विवाह श्री शंकर भगवान महादेव से हुआ। महादेव तो ब्रह्मा जी से बढ़कर बलवान है और ख्याति कीर्ति भक्ति सब में श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी उनको वंदन करते हैं। तो एक तो पुत्री बहिरंगा शक्ति भगवान की और उनका पति महादेव, तो विंध्याचल विंध्य पर्वत को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई मन में। उन्होंने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और तपस्या की, ब्रह्मा जी को पसंद किया उन्होंने। मैं बड़े संक्षेप में बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी एक पुत्री चाहिए जिसका पति युद्ध में महादेव को परास्त कर सकता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगा उन्होंने। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद ब्रह्मा जी को मन विचार आया कि अरे महादेव को कौन परास्त कर सकता है। बड़ी चिंता हुई उनको कि हमने तो वरदान दे दिया, अभी उसको पूरा कैसे करना है। तो उस वरदान को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी राजा रानी के लिए, कि महादेव को परास्त करने वाले केवल एक है परम ब्रह्म श्री कृष्ण, और उनकी पत्नी जो है वो राजा रानी, मतलब उनकी प्रिय सखी जो है राजा रानी है। तो राजा रानी इनके गर्भ में जब आएगी तब जाकर कृष्ण उनके पति बनेंगे, तब जाकर वो महादेव को वरदान मतलब महादेव को परास्त करने के योग्य व्यक्ति वही है। तो राजा रानी का उन्होंने बहुत आराधना किया, राजा रानी प्रसन्न हुई, अपनी समस्या को राधा रानी को समझाया कि ऐसी समस्या है मेरी। उन्होंने कहा कि मेरी तो चिरंतन माता कीर्ति मैया है, फिर भी मैं योग माया को आदेश देती हूँ कि जब मैं गर्भ के रूप में कीर्ति मैया के पेट में आऊँगी तो मुझे विस्थापित करके आप विंध्याचल के पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर देना। तो ये सब तय होती बात, तो विंध्याचल की पत्नी जो है वो गर्भवती होती है और चंद्रभानु जो चंद्रावली के पिता हैं उनके पत्नी के गर्भ से चंद्रावली गोपी उसका गर्भ और कीर्ति मैया के गर्भ से राधा रानी दोनों को विंध्य पर्वत के पत्नी के गर्भ में स्थापित करते हैं और यथावकाश उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद उनका संस्कार का विधि होता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो ये जब घटना हो रही है तो एक अलग सीन में और एक घटना हो रही है। जब यहाँ पर उनका जन्म हो रहा है तो गोकुल में मथुरा में कृष्ण का जन्म होता है और वहाँ से उनको गोकुल में लाया जाता है। और गोकुल में जानते हैं मथुरा में आप जानते हैं जब आठवां पुत्र का जन्म की बात होती है तो कंस देखते हैं तो ये तो कन्या है, उसके पहले ही भगवान को ट्रांसफर कर चुके हैं गोकुल में। सुबह जब आते हैं कंस जी देखते हैं कन्या है, तो माता कहती है कि मत मारो उसको, मैं तुम्हारे पुत्र के साथ ब्याह कर दूंगी उसका। लेकिन फिर भी वो चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए वो उसको उठाकर पत्थर पे पटकने की तैयारी कर ही रहे हैं तो देवी उसके हाथ से फिसल कर आकाश में चली जाती है। ये सब कहानी उनको पता है। लेकिन इस कहानी के इस अंग में एक ऐसी वस्तु है जो पुराणों में लिख गई है। भगवान जी में सुखदेव जी बताते हैं कि वो देवी कहते हैं कि मूर्ख कंस अपने बहन को कष्ट देना बंद कर दे, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, इतना तक बताया। लेकिन वो देवी उनको आगे बताती है एक और बात सुन ले, भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रिय सखी राधा रानी चंद्रावली के साथ उसका जन्म हुआ है, अष्ट सखी के साथ उनका जन्म हुआ है और वो जिसके पास रहेगी जिसका विवाह उसके साथ में होगा वो महादेव को परास्त कर सकता है। ऐसे इंफॉर्मेशन आकाश से देवी कंस को देती है। तो कंस जो है तुरंत पुत्रों को भेजता है और आदेश देता है कि जितने जितने पुत्र जन्मे हुए हैं, नवजात पुत्र बालक, मेल चाइल्ड, तो सबको आप विष पिलाकर नष्ट कर दो, और जितनी नवजात कन्याएं जन्मी हैं उनको उठाकर मेरे पास ले आओ। तो उसका आधा हिस्सा हमको पता है भागवत में दिया है कि वो जाके हजारों बालकों को अपना कालकूट भरा हुआ दूध स्तन से पिलाती है, मार देती है और भगवान को मारने का प्रयास करती है। उसके पहले वो ढूंढ रही है कि कहाँ पर सूर्य के समान तेज वाली कन्याएं उपस्थित हैं, आकाश से उड़ रही है। उसके पास सिद्धि थी, तिनके को अभिमंत्रित करके वो हवाई जहाज बना के उसको बैठकर आकाश में उड़ती थी। उसके पास सिद्धि थी, उड़ रही आकाश में, देखते कि विंध्याचल के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और दो सुंदर कन्याएं पांच अन्य कन्याओं के साथ में विराजमान है। सभी कन्याएं वहां पर जन्म लिया उन्होंने, उनका नाम बताऊंगा आगे मैं आपको। तो वो सातों कन्याओं को उठा दिए, सबके सामने उठाकर आकाश में उड़ने लगती है। तो विंध्याचल बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, अरे मेरे आंखों के सामने मेरी कन्याओं को उठाकर ले गई। ब्राह्मण को बुलाते, मंत्र जपो, इसको मार दो आकाश में। तो ब्राह्मण लोग मंत्र जपते हैं और पुत्रा जो है बड़ी कमजोर हो जाती है, एकदम क्षीण हो जाती है, बलहीन हो जाती है। तो बलहीन जब होती जाती है, उसकी शक्ति कम 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 होती जाती है, तो उसके हाथ से एक बालिका गिर जाती है। वो बालिका विदर्भ यानी नागपुर का जो इलाका है आज का, वहाँ पर गिर जाते नदी में। वहाँ पर विदर्भ के राजा भीष्मक देव जो है वो उसको प्राप्त करते हैं और अपने पास रखते हैं और तो 5 साल तक उसकी परवरिश करते हैं। फिर विंध्याचल को पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर जाम्बुवान जो है वो राम जन्म के अवतार से उनकी लीला चल रही है, तो द्वापर में भी जीते हैं। तो वो जाम्बुवान को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पर्वत में रह रहे हो, जाके मेरे कन्या को लेके आओ भीष्मक राजा के पास। जाम्बुवान जाके भीष्मक राजा से उस कन्या को लेके आते हैं, उसका नाम चंद्रावल्ली है। फिर जब ये तो आगे की कथा है, लेकिन एक कन्या गिर जाती है, दूसरी कन्या आगे ही ले जाती है और ब्रज में जब पहुँचती है वो, तो वो ब्रज में गिर जाती है। तो ब्रज में पूर्णमासी उसको प्राप्त करती है और पूर्णमासी उसको जाकर फिर जो बिंदु गोम की पत्नी मुखारा देवी है उसको सुपुर्द करती है और कहती है कि तुम्हारी जो कन्या है कीर्तिदा देवी और वृषभानु जो दामाद है उनकी पुत्री है, ये उनको सुपुर्द कर देना। फिर आगे जाकर कीर्ति मैया का जब विवाह होता है तो उनको सुपुर्द किया जाता है। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी ऐसी कि सुचेत्र राजा और कलावती ने तपस्या किया, तो मैं आपको बता रहा था तपस्या के रूप में उनका जन्म हुआ, कीर्ति मैया कीर्तिदा और वृषभानु महाराज के रूप में। और उनको वृषभानु महाराज बड़े सद्गुण संपन्न थे, अपने 9 भाइयों के बीच में बीच वाले भाई थे, वैसे वो अग्रज नहीं थे, वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, फिर भी उनके गुण इतने श्रेष्ठ थे कि उन्हीं को बरसाना क्षेत्र का राजा बनाया गया। और बुखारा देवी की और बिंदु को सुंदर कन्या सर्वगुण संपन्न कीर्तिदा उनको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। सब कुछ सद्गुण संपन्न, ऐश्वर्य, भक्ति, सब कुछ होने के बावजूद भी उनको एक दुख था कि उनको संतान नहीं थी, और नंद बाबा को भी यहाँ पर संतान नहीं थी। तो दोनों अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने तय किया कि अगर हम जमुना किनारे जाकर रहेंगे तो हो सकता है कि हमको संतान प्राप्त हो सकती है, जमुना जी बड़ी पवित्र हैं, बड़ी शुभ हैं। तो वो दोनों मिलकर अपने सारे राज्य के साथ में वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, वृषभानु महाराज रावल में और नंद महाराज गोकुल में। यथावकाश फिर उनको कृष्ण बलराम नंद महाराज को प्राप्ति होती है। और ऐसे ही एक दिन सवेरे वृषभानु महाराज अपने कुंड में भरे ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने को जाते हैं, तो उनको एक अजीब दृश्य नजर आता है। एक सुंदर 1000 पंखुड़ियों का प्रकाशमान, 1000 सूर्यों की तरह, चंद्रमा की तरह एक कमल जो है वो उनको जल में दिखाई पड़ता है। उसमें से अनंत किरणों की आभा निकल रही है, बड़ा आश्चर्य होता है, कभी ऐसा कमल दर्शन नहीं किया जल में। तो वो जल के अंदर से आते हैं उसके पास में, तो उनको पता चलता है कि ये प्रकाश जो है ये स्वर्ण कमल से नहीं आ रहा है, स्वर्ण कमल के अंदर एक कन्या है, उसके शरीर से ये प्रकाश आ रहा है, इसलिए वो कमल भी स्वर्ण कांतिमान नजर आ रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है उनको, सुंदर सुंदर कोमल अंग है उस कन्या के, उस कमल में विराजमान है। उस समय ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हो जाते हैं और वो आकाशवाणी करते हैं कि तुम सुचेंद्र राजा थे, तुम्हारी पत्नी कलावती देवी थी, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। उसकी भी कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ बीच में कि बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं शास्त्रों में। तो कलावती सुचेंद्र जब तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? कि सब ब्रह्मा जी उनको याद दिला रहे हैं, बाय द वे उपाख्यान कहते हैं उसको, उनको याद दिला रहे कि क्या हुआ हिस्ट्री में, क्या हुआ था इतिहास में। तो सुचेंद्र राजा कहते हैं आपको मोक्ष दे दो, ब्रह्मा जी कहते हैं दे दिया। तो कलावती देव को बहुत गुस्सा आता है, कहते कि इनको मोक्ष दे मेरा क्या होगा, ऐसे कैसे आप उसको मोक्ष दे सकते हैं। ब्रह्मा जी जानते थे कि तीन महासतियों में से एक महासती है, उसके शाप से वो डरते थे। उन्होंने कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना, इनका मोक्ष होने के पहले आपका समय जितना है उतना मैं उनका मोक्ष पोस्टपोन कर दूंगा, पर आप दोनों मेरे ब्रह्मालोक में रहना। क्योंकि तो कलावती देवी कहती है कि हमें वो पुत्री चाहिए जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो दोनों का वर जो है मैच कैसे किया जाए। तो कोई बात नहीं, जब तक भगवान की अंतरंगा शक्ति का जन्म होने का समय होगा तब तक आप दोनों मेरे ब्रह्मालोक में रहो, और उसके बाद में जब 28 बाद वापस आएगा वैवस्वत मनु के समय पे, वैवस्वत मनु के 28वें युग में जब भगवान कृष्ण के आने का समय होगा द्वापर में, तब ब्रह्मालोक से आप जन्म लेना, तो वो आप हो वृषभानु और आपकी पत्नी कीर्ति का, और ये है राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, ये आपकी पुत्री के रूप में आपके लिए प्रस्तुत है, इसलिए आश्चर्यचकित मत होना। तो बड़े प्रेम से वो उस कमल में से उस सुंदर कन्या को उठाते हैं और घर ले आते हैं अपने महल में, कीर्ति को दिखाते हैं। बड़ा आनंद होता है उनको कि बड़े दिव्य रूप से हमको कन्या की प्राप्ति हुई है, लेकिन बड़ा दुख भी होता है उनको, क्योंकि वह ना आँखें खोल रही है, मानो अंधी है, खिलौना बजाते हैं तो कुछ सुन नहीं रही है, ना कुछ बोल रही है, मतलब अंधी भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है। इतनी सुंदर कन्या जिससे हजारों सूर्यों के प्रकाश की आभा निकल रही है, हर अंग उसके श्रेष्ठ और कोमल है, हर अंग उसके दिव्य हैं, हर तरफ से उसके होने से हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है, फिर भी ये दुख है कि उसको उसका जन्म को हम कैसे लोगों को बताएंगे, कैसा उसका उत्सव मनाएंगे। तो वहाँ पर नारद मुनि जी और सब देवता लोग जानते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति आने वाली है। नारद मुनि जी एक चार्ट बनाते हैं अपने ज्ञान के हिसाब से, और वही जगह उसमें पॉइंट करते हैं कि यहाँ पर इसका जन्म हुआ गया होगा अपने ज्ञान के आधार पर, और वहीं पर पहुँच जाते हैं कीर्ति मैया वृषभानु महाराज के घर पे रावल में, और कहते हैं कि यहाँ पर कोई कन्या का जन्म हुआ है। तो नहीं, यहाँ पर कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ। उनको संकोच होता है बताने में, कैसे बताएं कि हमारे पास कन्या अंधी बहरी और गूंगी है, कोई संतान है आपको? तो फिर वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया सीता माँ को आगे करते हैं कि हमारे पास एक पुत्र है, एक गोप है सीता माँ। तो बड़े दुखी होते हैं नारद मुनि, अरे मेरा गणित कैसे गलत हो सकता है, मैंने बड़े सोच विचार से ये चार्ट बनाया था और यही घर है जहाँ पर ये प्रकट हो गई होगी। तो दुखी होकर विचार करते करते वो जाते हैं निकल के, उतने में घर में वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया चर्चा करती हैं, अरे संत महात्माओं की कृपा से क्या नहीं होता है, हो सकता है ये बड़े दिव्य विभूति हमारे घर पे आए हैं और इनके आशीर्वाद से कृपा से हमारी कन्या का भाग्य उद्धार हो सकता है, जाओ उनको बुला लाओ। तुरंत सखियाँ उनके पीछे भागती नारद मुनि के, बुला लेती, हाँ है हमारे पास कन्या का जन्म हुआ है, आइए आप। बड़े आनंद से उल्लासित होकर नारद मुनि भाग के आते हैं और अंतपुर में उनको ले जाते हैं, पल्ले में लेटी हुई है श्रीमती राधा रानी, आँखें खोल रही है, ना बोल रही है कुछ, ना सुन रही है। नारद मुनि को बोलते हैं कि क्या करिए, कष्ट है हमारे पास, कुछ उपाय बताइए। नारद मुनि सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं उनको और कहते हैं कि आप निःशुल्क निसंकोच होकर बड़ा उत्सव मनाइए, और कैसे मनाना है उत्सव उसका पूर्ण वर्णन करते हैं और कहते हैं एक बात ना भूलना, इस उत्सव में नंद महाराज यशोदा और कृष्ण बलराम को बुलाने को मत भूलना। सब लोग निकल जाते हैं तुरंत उत्सव की तैयारी करने के लिए, और नारद मुनि एकांत में राधा रानी के पास में अपने आप को पाते हैं। तो राधा रानी उनको 16 वर्षीय किशोरी अवस्था का दर्शन देते हैं, 16 साल की कन्या का पूर्ण ऐश्वर्य के साथ गोलोकेश्वरी के रूप में दर्शन देते हैं। नारद मुनि बेहोश हो जाते हैं, पुनः उठते हैं, अश्रु बहाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर बेहोश होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको आपका दर्शन जो हमें अष्ट सखियों के साथ में करना है। फिर वो उनको आदेश देते हैं कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ, और वहाँ पर लंबी कथा आगे बताएंगे आपको, यात्रा में बताएंगे शायद, तो कुसुम सरोवर में राधा रानी का अष्ट सखियों के साथ में कमल दल में कमल के पुष्प में खड़े दर्शन प्राप्त होते नारद मुनि जी को। फिर उनसे वो आदेश प्राप्त करते हैं कि आप नारद पंचरत्रिका विधि का वर्णन करो। तो नारद कुंड में रहकर वो वहाँ पर नारद पंचरत्रिका विधि का लेखन कर लेते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर जब उत्सव होने का समय आता है, यशोदा मई नंद महाराज का स्वागत होता है बालकों के साथ में, सब लोगों के स्वागत आगत में, भोजन कराने में, मीठी मीठी बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं। उतने में रेंगते हुए कृष्ण और बलराम यहाँ वहाँ डोलने लगते हैं घुटने के बल पर, और धीरे धीरे सब किसी को ध्यान नहीं, सब लोग बातें करने में लगे हुए हैं। तो कृष्ण भगवान जो है वो सीधे चले जाते हैं अंतपुर में, जहाँ पर पलने में राजा रानी लेटी हुई। आप जानते हैं ना, जब रेंगते हैं बच्चे घुटने के बल तो किसी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, किसी मैया की साड़ी को या पिताजी की धोती को पकड़ कर या खंभे को पकड़ कर या कुर्सी को पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे वो खड़े होकर पल्ले को पकड़ के खड़े हो गए। एक जगह लिखा है कि जैसे ही भगवान आए तो उनका दिव्य गंध से, जब उनकी दिव्य गंध राजा रानी के दिव्य नाक में प्रवेश किया, उसकी अनुभूति हुई, तुरंत राजा रानी ने आंखें खोली और जोर से किल्लोल किया, राधा रानी की। एक जगह वर्णन आता है कि जैसे वो चढ़े और पल्ले को बल पकड़ कर खड़े हो गए तो राधा रानी को अपने दिव्य हस्त कमरों से स्पर्श किया। उनका स्पर्श होते ही राधा रानी ने आंखें खोली और दिव्य ध्वनि से सबको आकर्षित कर लिया। सब लोग अंतपुर में भाग के आ गए और देखा कि अरे कृष्ण भगवान ने उसके सान्निध्य से स्पर्श होते ही हमारी कन्या ने आंखें खोल दी। तो उसका रहस्य यह है कि जब गौलोक में जब भगवान ने उनको कहा था कि हम जाने वाले हैं और मूर्छित हो गई थी, फिर उन्होंने कहा कि हम जमुना जी और गोवर्धन वृंदावन नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, तो भगवान ने हाँ कह दिया। तो उन्होंने और एक बात कही थी उस समय कि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक हम ना कुछ देखेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे। इसलिए अपने प्रियतम इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान का वो इंतजार कर रही थी, इसलिए वो कुछ देखने रही थी, कुछ बोलने रही थी, कुछ सुनने रही थी, वो कुछ सुनना ही चाहती थी। ये भी बरसाने का एक साई भाव है। यहाँ पर कृष्ण के अलावा ना कुछ देखा जाता है, ना कुछ सुना जाता है, ना कुछ बोला जाता है, ना कुछ की और किसकी सेवा की जाती है, केवल इष्ट ही यहाँ पर कृष्ण है और जिनकी सेवा में राधा रानी अपना जीवन पूर्णतः से समर्पित करती है। इस तरह से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। उस राधा रानी के जन्म के उत्सव में ऐसे लिखा है कि पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती देवी, सारी देवियाँ, जितने भी भद्रकाली, जितने भी चंडिका, दुर्गा, सब देवियाँ जो है भेष बदल कर आई। कोई ब्राह्मणी बनकर आई, कोई फूल बेचने वाली बनकर आई, कोई धाड़िन बनकर आई, कोई मालिन बनकर आई, अलग अलग भेष में आई वो राधा रानी का दिव्य दर्शन करने के लिए। क्योंकि ऐसा दिव्य दर्शन बाल रूप में, बालिका रूप में गौलोक में भी नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान भी किशोर अवस्था में रहते हैं, राधा रानी भी किशोरी अवस्था में रहती है, 16 साल की अवस्था में। केवल भव वृंदावन में जब वो लीला करते हैं तो वो बाल रूप में कृष्ण और बालिका रूप में राधा रानी यहाँ दर्शन देती है। ऐसा दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने के लिए सब देवी देवता यहाँ पर आते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नियाँ बनकर और राधा रानी के घर में आकर उनको भेंट उपहार देती है और उत्सव में भाग लेती है। कीर्ति मैया वृषभानु भी न जानते हुए कि कौन है, सबको ब्राह्मण ब्राह्मणियों को गाय दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, अलंकार दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, भोजन कराते हैं। और ऐसे कहा गया है कि राधा रानी का जब जन्म हुआ तो वृषभानु महाराज इतने खुश हुए इस उत्सव के समय। वृषभानु महाराज नंद महाराज से कई गुना अधिक अमीर थे, उनके पास एक एक रत्न के अलग अलग भंडार थे, गोदाम थे भरे हुए, नौ प्रकार के रत्नों के अनंत भंडार थे उनके। तो उन्होंने एक भंडार खोल दिया, सब ब्राह्मण लोग वहां पर आए, सबको दान दिया उन्होंने भंडार खोलकर रत्नों का। और जाने लगे ब्राह्मण लोग खुश होकर तो खबर आई कि उन्होंने और एक भंडार खोल दिया है दूसरे प्रकार के रत्नों का, जैसे कोई रूबी होता है, कोई एमरल्ड होता है, कोई रत्न होता है, हीरा होता है। तो उन्हें क्या किया, प्राप्त किया हुआ जो रत्न था उसको वहीं छोड़ दिया जमीन पर और दोबारा भागे वृषभानु महल में। वहां पर दूसरे रत्नों को प्राप्त किया भेंट के रूप में, दक्षिणा के रूप में, और बड़े खुश होकर जाने लगे। फिर खबर आई कि तीसरा भंडार खोल दिया है अभी, तो वो रत्नों को डालते हैं जमीन पर और वापस भागते हैं। इस तरह से एक के बाद एक भंडार खोलते गए नंद वृषभानु महाराज, और पूरे ब्रज में सभी जगह पर भूमि पर रत्न बिखरे हुए थे। ये राधा रानी के होने का और अवतीर्ण होने का ये लक्षण है। राजा रानी भाग्यलक्ष्मियों की भाग्यलक्ष्मी है, सभी देवियों की स्रोत है, वो अन्नपूर्णा का भी स्रोत है, सरस्वती का भी स्रोत है, लक्ष्मी जी का भी स्रोत है, धन का भी स्रोत है, ऐश्वर्य का स्रोत है, सेवा भाव का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, रस का स्रोत है, सबका स्रोत वही है। इसलिए उसके आने से सब जगह धन दौलत अन्न धान्य ऐश्वर्य प्रसन्नता आनंद भक्ति सेवा सबका उगम हुआ। अचानक जो गरीब फकीर साधु थे वो धनवान बन गए, अचानक जो रोटी सूखी खाते थे उनके घर में हलवा पूरी उत्पन्न हो गई। केवल वहाँ पर नहीं, महल में जहाँ उत्सव चल रहा है सबके घर में छप्पन भोग उत्पन्न हुआ, सब गरीब लोगों के घर में धन उत्पन्न हुआ, सब लोग धनवान हो गए। हाँ, ऐसे कहा भिखारी धनीराम बन गए। इस तरह से राधा रानी का जन्मदिन जो है मनाया गया और वो यहाँ श्री जी 3 साल के बाद में लालन पालन हुआ, राष्ट्रों का आतंक बढ़ा। तो फिर ऋषभानु महाराज और नंद महाराज दोबारा चर्चा किया, तभी यहाँ पर रोज का आतंक हो रहा है। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम दौड़ के अपने घर जाएंगे। तो आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू में इसका विस्तार में वर्णन दिया है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप का राज्य यहाँ से शिफ्ट किया, नंद बाबा गोकुल से नंदगांव में और ऋषभानु महाराज रावल से फिर बरसाने में आके बस गए। और उसके बाद में 10 साल तक राधा रानी और कृष्ण बलराम ने नंदगांव में निवास किया, राधा रानी ने यहाँ निवास किया और अनंत लीलाओं का यहाँ पर प्रकटीकरण हुआ। और वो कथा आज भी रह जाती है, वो हम कल बताएंगे कि कैसे राक्षस का यहाँ पर प्रवेश नहीं हुआ। हरे कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की जय। धन्यवाद सबका।